भुवन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर रतन मंदिर मनो आवृते कालिंदे रे राजहंस किलिकारे आवृते कालिंदे रे राजहंस किलिकारे आहे शोभे कनक कमा आहे शोभे कनक रम्य स्थान दिव्य चिंता मरे धामा वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मरे धाम रतन मंदिर मनोहर रतन मंदिर मनोहर आवृते कालिंदे राजा हंस किलिकार आहे शोभे कनक कमा आवृते काले हर मध्य हेमा पीठ अष्टदल वेष्टिता अष्टदले प्रधान तार मध्ये तार मध्ये रत्नासन प्रसिया छे तुए जाना राम संगे सुंदर राधे तार मध्ये रत्नासन बसिया छे तुए जाना श्याम संगे सुंदर राधे ओ रूप लावण्य रासे आमे परिचे खासे हस परे हस संभाषण गुरु पलावन्या रासे आमे आ परिचे खासे हस परे हस संभाषण नरोत्तम दास कहे नित लीला सुखमय सदा ही पूरा मोरा मना नरो नरोत्तम दास काहे नित लीला सुखमय सदा ही पूरा मोरा मना हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. वृंदावन रम्य स्थान चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम राम हरे हरे। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे। वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। राधे श्याम भज राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो आप सबका स्वागत है आज वृंदावन धाम में। जितने भी नए भक्त आए उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम आज वृंदावन धाम में हैं। तो अभी हम भगवान की कथा मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाते सत्कांतिकम्। वंदेहां श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं वंशजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वांछाकल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रीमान रास रसारंभे वंशे वट तटस्थित कर्शन वेनार गोपे गोपीनाथ श्रेयस्तु नमः। दिव्य वृंदावरण्यं कल्पद्रमदो श्रीमत रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमत राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठ्यालभे सेव्यमानं स्मरामि। जयतां सुरतो पंगो मर्म मंदिर मतिर्गतः मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। नवीन नीरद श्यामम नीलेन्दिवरलोचनम् यशोदा नंदन नेमि कृष्ण गोपाल रूपिणम् नीलोत्पल दलम श्यामम यशोदा नंदन नंदनम गोपिका नयनानंदम कृष्ण गोपाल प्रणाम। हरे कृष्णा वृंदावन धाम की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। कृष्ण बलराम की जय। तो अभी हमने जिस भजन को पढ़ा है ये बहुत ही दिव्य भजन नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा रचित है जो कि हमारे महान आचार्य हैं। नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन में कह रहे हैं वृंदावन रम्य स्थान। वृंदावन कैसा स्थान है? रम्य मतलब रमण करने योग्य है और दिव्य चिंतामणि धाम ऐसा धाम है जो कि दिव्य चिंतामणि। कम सुबह भी बोल रहे थे चिंतामणि धाम का मतलब है जहां पर चिंता अबाउट मनी ना रहे तो ऐसा धाम है चिंतामणि धाम। बाकी संसार के जितने भी जगह है वहां पर चिंता अबाउट मनी रहता है लेकिन ये ऐसा स्थान है जहाँ पर चिंता अबाउट मनी नहीं है, चिंता अबाउट कृष्ण है। तो यहाँ पर कृष्ण चिंतन करने से बहुत ही अधिक कृपा प्राप्त होती है। तो आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इन्हीं कथाओं का श्रवण करने के लिए, क्योंकि वृंदावन में सबसे मुख्य है कि जो भी आप चिंतन करेंगे वो आपको प्राप्त होगा, जो भी आप चिंतन करेंगे। और कई बार कई भक्तों का अनुभव है जो जो आप सोचेंगे वो प्राप्त होगा। हो सकता है किसी के मन में आ जाए एक गिलास छाछ और मिल जाए, थोड़ी देर बाद आकर कोई कहेगा प्रभु जी एक गिलास छाछ ले लीजिए, और ऐसा अनुभव है कई भक्तों का। तो है ना, मैं सुबह बता रहा था दूसरी बस में कि एक बार वृंदावन में मेरे मन में था कि श्रीमती राधा रानी का पुष्प मुझे मिल जाए। उनके हाथ में जब ड्रेसिंग करते तो यहाँ पर एक फ्लावर डालते हैं जो कि कृष्ण को देने के लिए होता है। तो ऐसे ही मैंने मन में आ गया, प्रार्थना करी, देख लिया, तो लेकिन ऑल्टर क्लोज हो गया 12:30-1 बजे। तो होता है उदास हो जाता है मन, तो उदास होकर के मैं वापस चल दिया। तो पुजारी जो ऑल्टर से उतरते हैं वो सारे गार्लैंड उतार के आते हैं, महाप्रसाद राजभोग लेकर आके कहते हैं कि प्रभु जी ये फ्लावर। तो मैंने कहा कि किस चीज़ का है? बोले राधा रानी का है, उनके हाथ का है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? कह रहे नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं किसको दूं, तो देखा आप ही अकेले यहाँ पर खड़े हैं तो मैंने आप ही को दे दिया। तो सोचिए कि भगवान की कृपा आपको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए वृंदावन धाम जो है ये दिव्य धाम है, खाली बोलने के लिए नहीं है, देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, जब आप जाएंगे ना तो चश्मे लेकर मत जाइएगा, है ना, चश्मा और मोबाइल। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसकी बड़ी दोस्ती है चश्मे और मोबाइल से। कौन है वो? इतनी दोस्ती है कि वो आप जैसे ही जाएंगे ना तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, इधर वाली कंधे पे पैट करेगा टक टक, आप उड़ के देखेंगे कौन बुला रहा है, और वो ऐसे करे स्टाइल से उतारेगा आपका और ले जाए, फिर उसको फ्रूटी दो, फिर वो दे देता है। लेकिन जो भक्त नहीं होते हैं ना उनका तो चबा डालता है वो, और भक्त होते हैं उनका ऐसे दे देता है वो। तो ट्राई कर सकते हैं आप चश्मा पहनकर, आपकी भक्ति कर ले। तो एक बार एक महाराज बता रहे थे कि चश्मा क्यों उतारता है बंदर वृंदावन में, जानते हैं इसका उत्तर क्या है? क्यों उतारते हैं वृंदावन के बंदर चश्मा, क्यों उतारते हैं? कई लोग बोलते हैं यहाँ वृंदावन के बंदर को ना ट्रेन कर रखा है ताकि हमको क्या मिल जाए, हमको ये लोगों से खूब सारा धन मिल जाए, इसलिए वृंदावन के बंदरों को ट्रेन किया है। पर फैक्ट ये नहीं है, वृंदावन के बंदर इसलिए चश्मा उतारते हैं, वो कहते हैं वृंदावन का दर्शन चश्मे से नहीं हो सकता, वृंदावन का दर्शन भक्ति के चश्मे से होता है, है ना। आंखों में क्या लगाना पड़ता है? भगवान की भक्ति का चश्मा। प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंतया गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रेम अंजन छुरिता भक्ति विलोचनेना, प्रेम का अंजन एक होता है ना अंजन, आई डोंट नीड अंजन होता है। यहाँ पर एक स्थान है वृंदावन में जिसे अंजन स्थान बोला जाता है। वहां पर एक बार राधा रानी ने भगवान कृष्ण को कहा कि तुम्हारे नेत्र जो है ना वो सुंदर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें अंजन नहीं लगा है, यशोदा मैया ने जो लगाया था वो आपने रोक करके धो दिया है, नहीं चाहिए। अंजन जो था ना उसको धो दिया है रो रो करके आपके आंखों से आंसुओं से, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ आपके अंजन लगा देती हूँ। तो अंजन स्थान है, वहां पर शिला को घिस करके राधा रानी ने और ऐसे करके कृष्ण की आंखों पे लगा दिया, तो कृष्ण बहुत सुंदर दिखने लग जाते हैं। तो वो आज भी अगर आप जाएंगे ना उस शिला पर उंगली रगड़ेंगे तो वहां से अंजन प्रकट होता है। 5,000 साल पुरानी लीला है, 5,000 साल, नॉट 50 ईयर्स, 5,000 ईयर्स। तो ये दिव्य चिंतामणि धाम है, लेकिन देखेगा कैसे? संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संतों के हृदय से ही प्रकट हो सकता है। इसलिए भक्तों के संग में आप सोचे मैं बुक पढ़ लूंगा, इंटरनेट से देख लूंगा, ये वीडियो देख लूंगा। भक्ति महारानी कहती है जैव धर्म में लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति महारानी इंटरनेट से प्राप्त कहां से होती है? जब रहती कहां है वहीं से तो मिलेगी। अगर किसी को पैसा चाहिए हो तो किससे मांगना पड़ेगा? जिसके पास अभी है, किसके पास?
भक्तों के पास, तो मिलेगा कैसे? कई लोग होते हैं वो आजकल कोरा से सर्च करते हैं हर क्वेश्चन का, गूगल के ऊपर एक और आ गया कोरा, सो कोरा.com से हर क्वेश्चन का उत्तर मिलता है. दैट इज द बिगेस्ट साइट फॉर गिविंग द आंसर्स. सेकंड इज इस्कॉन डिजायट्री, फर्स्ट इज कोरा. सो लोग सोचते हैं उससे मुझे ज्ञान मिल जाए. ज्ञान तो मिल सकता है, लेकिन कृष्ण किससे रिझते हैं? भक्ति से, प्रेम से. तो हम ज्ञानी बनने के लिए इस मार्ग में नहीं आए, हम किस लिए बनने आए हैं? प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग. ये भक्ति मार्ग प्रेम का मार्ग है. गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अंगूठा छाप हैं, फिर भी वो स्कॉलर भक्ति सिद्धांत महाराज को ज्ञान प्रदान करते हैं. तो जो भौतिक दृष्टि से संसार को देखेगा, बंदर कहते हैं, वो तुमको कभी वृंदावन दिखेगा ही नहीं. वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम. चिंतामणि स्पर्श करेंगे, जो चिंता करेंगे, जो चिंतन करेंगे, वो प्राप्त हो जाएगा. तो इसलिए यहां पर ज्यादा चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ कृष्ण चिंतन करना चाहिए. और यहाँ पे जब भी हम यमुना में जाएंगे, यमुना के अंदर कहते हैं तार मध्य हेमा पीठ अष्ट दाले बेष्टि था, अष्ट दाले प्रधान नायिका. अष्ट दल, एक कमल है जो कि अष्ट दल में, आठ पेटल्स हैं उसके लोटस के, और सभी पर उनकी गोपियां बैठी हैं, और बीच में कौन बैठे हैं? तार मध्य भगवान राधा और कृष्ण बैठे, मध्य में बैठे सभी रानियां, सभी सखियां जो हैं उनकी सेवा कर रही हैं. वैसे राधा रानी की 63 करोड़ सखी हैं. कितनी? 63 करोड़. अभी उनको हमारी आवश्यकता नहीं है, वैकेंसी फुल. लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, हमको अपनी सहचरी बना लो. इसीलिए रोज सुबह तुलसी आरती में भी गाते हैं क्या, मोरा एही अभिलास विलास कुंज दियो वास, है ना, विलास कुंज में. विलास कुंज में हो, विलास मतलब जहां राधा और कृष्ण ने रास लीलाएं करी हैं, विलास किया है, ऐसे स्थान पर हम चाहते हैं हमें जगह मिल जाए. वैकेंसी जब फुल है तो जगह कैसे मिलेगी? बहुत ही कोई अप्रोच लगा कि कोई आएगा तभी तो नौकरी मिलती है. तो यहाँ पर साधारण रूप से मिलना मुश्किल है. तो इसलिए बंदर यहाँ चश्मा ले लेते हैं कि आप भौतिक दृष्टि से इस वृंदावन को देख नहीं पाएंगे. वृंदावन देखेंगे संत के हृदय में, जो वृंदावन है जब वो अपने रियलाइजेशन शेयर करेगा, तब आपके हृदय में भक्ति महारानी कहती है हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर. कहते हैं इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन बट नो ट्रांसफॉर्मेशन. तो वी आर हेयर फॉर नो इन्फॉर्मेशन, वी आर हेयर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. हम चाहते हैं हमें प्रेम का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, जब जाए तो लगे ओह वृंदावन से जाना पड़ रहा है, प्रभु कब दोबारा यात्रा आएंगे हम लोग, है ना ये. लेकिन अकेले आएंगे, पति पत्नी बच्चे के साथ में, तो गारंटी है. मेरा अपना अनुभव है, अपना भी खुद का, इतना जानने के बाद, इतना बोलने के बाद, अगर मैं अकेला आऊंगा सिर्फ फैमिली के साथ, भक्तों के साथ, तो आप उसका आनंद नहीं ले. ऐसी कथा होगी क्या? आप आएंगे सीधा कमरे में, कोई बच्चा बोलेगा मुझे भूख लगी, उसको पेप्सी दिलाने चले जाएंगे, फिर वही बहुत ही काम, चार फोन कर लेंगे रिश्तेदारों को, है ना. लेकिन यहाँ जो बाउंडेज है कि 3 बजे जाना है, कथा सुननी है, ये जो चेतना भी है ये आपको शुद्ध कर दी है. भले आपको कथा में नींद आ जाए, लेकिन कथा में जाने की जो जो ये थॉट प्रोसेस है, यही शुद्धिकरण का कारण है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. प्रभुपाद बोलते थे एंजाइटी फॉर कृष्णा प्यूरिफाइज यू. भगवान के लिए एंजाइटी होना, अरे अरे जिनकी सेवा है ना उनको एंजाइटी होती, चलो चलो सब लोग आ जाएंगे, मुझे फैन लगाना है, गद्दा लगाना है, हारमोनियम रखना है, एंजाइटी फॉर कृष्णा. तो ये जो वृंदावन धाम है, बताते हैं कि ये भगवान की एम्बेसी है. जैसे मान लो अमेरिका को कोई व्यक्ति इंडिया में आएगा तो कहां आएगा? एम्बेसी में आएगा ना, अमेरिकन एम्बेसी में. और अमेरिकन एम्बेसी में कौन से रूल चलते हैं? जो अमेरिका में चलते. ऐसा तो नहीं अमेरिकन एम्बेसी में इंडियन रूल्स चलेंगे, अमेरिकन एम्बेसी में अमेरिका. तो भगवान के गोलोक वृंदावन की एम्बेसी है भौम वृंदावन श्रीधाम वृंदावन. इस एम्बेसी में वही रूल चलते हैं जो गोलोक धाम में चलते हैं. जितना प्रेम गोलोक धाम में कृष्ण करते हैं, उतना ही इस एम्बेसी में भी प्रेम करते हैं. वहां भी कृष्ण है, यहां भी कृष्ण है. ऐसा नहीं है कृष्ण तो ना द्वापर युग के बाद में ना 125 साल की लीला पूरी करके ना चले गए थे, उनके पैर में तीर लगा था, वो मर गए. भाई आपके पैर में तीर लगा, आप मर जाओगे? आप तो मतलब कुछ हो ही नहीं, भगवान के आगे क्या है? एक स्फुरलिंग मात्र भी नहीं है. वो व्यक्ति के पैर में तीर लग जाए तो वो नहीं मर सकता, तो कृष्ण क्या मर सकते हैं? इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मूढ़ाम न अभिजानाति, मूर्ख मुझको नहीं जान पाएंगे, मूढ़ मतलब मूर्ख गधा, वो मुझे कभी जान ही नहीं पाएंगे। मूढ़ाम न अभिजानाति, मुझे कौन जान सकते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति पूर्वक आप मुझे जान सकते हैं। दो श्लोकों में अलग अलग जगह भगवान ने कहा, एक जगह मूर्ख नहीं जान सकते, एक जगह सिर्फ भक्ति मुझे जान सकते हैं। तो भक्तों के संग में जब हम आते हैं तो यहाँ पर वही एम्बेसी है जो गोलोक वृंदावन की है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल है वृंदावन। पता है क्यों वृंदावन इसलिए स्पेशल है? क्योंकि गोलोक वृंदावन में भी जो चीजें नहीं होती हैं वो इस भौम वृंदावन में होती है। गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण सदा 16 साल के बने रहते हैं, युवा अवस्था में रास लीला माधुर रस उत्तम रस वहां पर है। परंतु जब हम इस वृंदावन में आते हैं तो यहाँ पर होता है वात्सल्य रस, साख्य रस, ग्वाल बाल सखाओं का कृष्ण के पीठ पे चढ़ जाना और कहना चल काना हमको लेकर के कहां चल, दूर ले चल, है ना। और एक दिन तुम मेरी पीठ पे चढ़ोगे, एक दिन मैं तुम्हारी पीठ पे, पिट्ठू पिट्ठू खेलते हैं ना, कहते हैं शास्त्रों में गड़ागड़ी करना, गड़ागड़ी मतलब दोनों हाथ पकड़ लेना और जोर लगाना कृष्ण के साथ। कहां हुआ? जिस जगह आप बैठे हैं इस राधेश्याम आश्रम स्थान रमन रेती में हुआ। रमण मतलब जहां आनंद का अनुभव किया, रेती मतलब यमुना की रेती थी, यहाँ पर यहाँ कृष्ण बलराम चलते थे, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस स्थान का यहाँ पर मंदिर चुना कृष्ण बलराम, क्योंकि यहाँ कौन खेलते हैं? कृष्ण। तो हम बाई चांस नहीं जा पाए सुबह मंदिर में, तो शाम को जब हम यमुना स्नान करके और दर्शन करके लौटेंगे तो शाम को 8 बजे 9 बजे मंदिर बंद होता है, तो हम रात्रि दर्शन कर सकते हैं। और अगर वो चांस भी मिस हो गया तो सुबह का तो है ही फिक्स, 4:10 पे मंगला आरती होती है, 4:10 से 5 बजे तक आप राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताय का दर्शन कर सकते। तो ये बहुत ही उमदा स्थान है, यहाँ पर भगवान अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में, जैसे एम्बेसी से कोई व्यक्ति आएगा तो कैसे आएगा, पहले उसके लिए अरेंजमेंट किया जाएगा, उसके सारे कलीग्स आएंगे, उसके बाद में वो आएगा। ऐसे ही कृष्ण तब आते हैं जब ब्रह्मा विष्णु महेश सबको यहाँ भेज देते हैं, यहाँ तक कि विष्णु गोवर्धन पर्वत बन के विराजमान है इस व्रज मंडल में, शिव जी नंदीश्वर पर्वत हम जाएंगे नंदगांव में पर्वत बनकर विराजमान है, ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बन के बरसाना में विराजमान है। सोचिए जिन ट्रिनिटी की बात दुनिया करती है, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, वो तीनों गॉड जो है यहाँ पर क्या बन जाते हैं? पहाड़ बन जाते। सोचिए चेतन से दिव्य स्तर से अचेतन वस्तु बन जाना, वैसे तो पहाड़ भी चेतन होते हैं परंतु चर अचर नहीं, चलते नहीं, वहीं रहते हैं। शास्त्रों में तो वर्णन है पहले पहाड़ उड़ा करते थे लेकिन बाद में उनको श्राप देकर उनके पंख काट दिए गए, क्योंकि वो लोगों को बड़ा परेशान करते थे, जिधर गिरते थे उधर कम्युनिटी समाप्त हो जाती थी, तो इसलिए पहाड़ों का उड़ना बंद कर दिया गया। तो वृंदावन भी कहता है वृंदावन में जो लोग बहुत उड़ते हैं ना उनके क्या कर दिए जाते हैं, यहाँ पर पर काट दिए जाते हैं। एक बार नारद मुनि थे, उन्होंने को जब मालूम पड़ा कि कृष्ण रमन रेती के अंदर कृष्ण बलराम के साथ में लीला कर रहे हैं, तो नारद मुनि ऊपर से देख रहे थे, रमन रेती कृष्ण बलराम ये प्रभु नहीं हो सकते, मेरे आदि पुरुष कृष्ण ये तो कोई ग्वाला है, कैसे बांध रखा है करदनी, उसमें एक बांसुरी लगाई है, सर पर पटका बांधा है, नंगे पांव मिट्टी में खेल रहा है, ये कोई भगवान है, दिख नहीं रहे थे उनको दूर से। तो फिर धीरे धीरे जब दिखेगा नहीं तो क्या करेगा आदमी, और पास जाएगा और पास जाएगा और पास जाएगा और पास जाएगा, और बिल्कुल जब जमीन पर उतर गए तब उनको भगवान के दिव्य साक्षात्कार हुआ। नारद मुनि कहते अरे भगवान को स्पर्श करते ही, देखते ही, इस भूमि का स्पर्श करते ही, कहते हैं इस भूमि का स्पर्श करते ही वृंदावन जितने भी करोड़ों जन्मों में आपने पाप किए हैं वो ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे शेर की दहाड़ से सारे का सारा जंगल समाप्त हो जाता है, सूर्य की एक किरण से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से इस धाम को स्पर्श करने से, खाली छू लिया आकर के प्रणाम कर दिया तो जितने भी पाप किए हैं वो नष्ट, कितनी शक्ति। तो नारद मुनि जब नीचे उतरे तब उनको इस दिव्य भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, जब दर्शन करने लगे तो कहते हैं प्रभु मैंने जब ऊपर से देखा, मेरे पास दिव्य नेत्र है, तीनों लोकों में मैं प्रचरण करता हूं, प्रचार करता हूं, आपका दर्शन नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने उनको एक शिक्षा दी जो हमारे लिए भी है, कहा जो हवा में रहते हैं ना उनको दर्शन कहां होता है, दर्शन बेटा नीचे आ जा। विनम्रता की स्थिति में जब कोई आता है जब वो जानता है कि मैं दोषों से भरा हूं तब कृष्ण का दर्शन, जब ये जानता है कि मैं गुणों से भरा हूं वो सबसे बड़ा अवगुण है. वन हु सेज आई नो एवरीथिंग ही डजंट नो एनीथिंग, वन हु सेज आई डोंट नो एनीथिंग ही नोज एवरीथिंग. वृंदावन का ज्ञान यही है, मैं कुछ नहीं. चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी, मोर गुरु मूर्ख देखी, है ना, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखा और क्या दे दिया, मंत्र किबा मंत्र दिला गोसाई, एक गोसाई ने मुझे कौन सा मंत्र दिया, जपिते जपिते होइला पागल, जपते जपते मैं तो पागल हो गया हूं. सारे लोग कहते थे सन्यास लिया है, शास्त्र पढ़ो, ज्ञान की बातें करो, ये क्या करते रहते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. वैसे तो कृष्ण हर जगह विराजमान है, क्या द्वारका में नहीं है भगवान, रुक्मणी द्वारका देश, जगन्नाथ बलदेव गौर निताई सभी है, लेकिन हम वृंदावन क्यों आते हैं. लोग बोलते हैं भगवान तो सब जगह है, हमें धाम जाने की आवश्यकता है. हम धाम में भगवान को मिलने नहीं आते हैं, पर भगवान तो हर जगह है. अगर चाहेंगे तो कृष्ण के आपके घर में प्रकट नहीं हो सकते, आपको साक्षात दर्शन नहीं दे सकते. यहां क्यों आए हैं, यहां इसलिए आए हैं क्योंकि यहां का जो एनवायरमेंट है, यहां का जो वातावरण है, जब आप कल सुबह उठेंगे 4 बजे, अभी जब आप जाएंगे संध्या में यमुना के लिए, आप देखेंगे कि यहाँ का वातावरण बहुत अलग है. वो वातावरण पूरा हृदय को ऐसे शुद्ध कर देता है, ऐसा लगता है जैसे कचड़े वाले बर्तन को वो माजते हैं ना, निप बार से माज देना कहते हैं, चमकार, निप बार की चमकार है, इसे चमका देता है हृदय को पूरा, कि जाते वक्त लोगों को आंसू निकलने लग जाते हैं. वृंदावन और कितनी दूर है हमारे दिल्ली से. आज सुबह में जब आया तो एक पानीहाटी, मायापुर के पास एक जगह है पानीहाटी, जहां पर नित्यानंद प्रभु ने दही चिवड़ा फेस्टिवल किया, वहां के दो भक्त मिले तो बोल रहे थे आप लोग लकी हैं, वृंदावन के पास रहते हैं, आप लोग तो आते जाते रहते होंगे. मैंने कहा प्रभु जी जाते ही जाते हैं, आते तो बहुत मुश्किल से यहाँ पर, क्योंकि आते हैं भक्तों के संग और भक्तों का संग जोड़ने में ही बहुत समय लग जाता है. पहले दिल्ली में भक्त बनाओ, फिर उनको इकट्ठा करो, फिर लेके आओ, तब तो पता चलता है. जब तक लेकर के आए 10-15 नाराज होकर निकल जाते हैं, अरे हमें ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, तुम में ये दोष, तुम में ये दोष. तो ये संसार ना सांसे पल 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 करके मिले हैं, इसमें जितना अचीव कर सकते हैं, जितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को, मोस्ट कंसंट्रेटेड कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के अलावा कहीं नहीं है. इसको जितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं कर लेंगे, क्योंकि अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति होनी चाहिए. उसके लिए जितना ज्यादा कृष्ण भावना भवित रहे, तो प्रभुपाद जी कहते थे धाम में आने के लिए आपको अगर अपना नौकरी का हिस्सा भी देना पड़े ना तो चलेगा, क्योंकि धाम में आना बहुत जरूरी है. इस धाम के वातावरण में, जैसे अभी आप कथा सुन रहे हैं, आप सबकी एकाग्र चित्ता है कि नहीं, लेकिन यही कथा आप जब वृंदा मंदिर में सुनते हैं, वहां पे चहल पहल रहती है, शोर शराबा रहता है, कोई कचौड़ी खा रहा होता है, कोई आइसक्रीम खा रहा होता है, किसी का बच्चा रो रहा है, लेकिन यहाँ एक में वो सबका टारगेट है कृष्ण को जानना, कृष्ण को समझना. तो हो सकता है आप में से कोई भाग्यशाली हो, नीचे उतरे या अभी यमुना की तरफ जाए, मदन मोहन मंदिर जाए, सनातन मंदिर जाए, तो हो सकता है उसको कृष्ण का दर्शन हो जाए. तो लोग बोलेंगे कृष्ण का दर्शन कैसे होगा, कृष्ण तो मूर्ति में है ना. लेकिन भगवान ने, अक्रूर जी जब भगवान को लेने आए थे और उनको मथुरा की ओर ले जा रहे थे, तो भगवान ने मना कर दिया, मैं वृंदावन त्याग के नहीं जाऊंगा. तो जो जाते हैं वो विष्णु हैं, लेकिन जो रह जाते हैं वो कृष्ण हैं. आदि रूप में भगवान कभी अपनी एम्बेसी छोड़कर नहीं जाते हैं. भगवान कहते हैं वृंदावन परित्याज एको पदम न गच्छति, एक भी पदम छोड़ करके मैं इस वृंदावन का त्याग करके जाता ही नहीं हूं. और अनेकों संतों का अनुभव हुआ है, श्रील प्रभुपाद अनेकों बार कृष्ण का साक्षात्कार हुआ उनको, भगवान से उनका संपर्क हुआ. तो अगर हम उनकी परंपरा में आते हैं तो क्या हमको नहीं हो सकता है, हमको भी हो सकता है, हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर करता है. एक बार इस्कॉन वृंदावन में भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन हुआ, जब उनके चले जाने के बाद, समाधिग्रस्त हो जाने के बाद. तो इस प्रकार से अनेकों बार आपको कृष्ण का दर्शन हो सकता है, क्योंकि भगवान तो है, बस आपका ये चश्मा बंदर जो उतारता है कहता है इससे नहीं दिखेगा भाई, कैटरेक्ट जो हुआ है ना मोतियाबिंद, इसका ऑपरेशन करा के आओ, प्रेम का अंजन लगा के आओ, फिर देखो कृष्ण कैसे दिखेंगे. अभी जाएंगे तो अभी हमको दिखेगा धूप है, पत्थर, गर्मी है, बोट वाला कैसे पैसे मांग रहा है, चुस्की वाला क्या बोल रहा है, ये मंदिर कितना पुराना होगा, अपना अनुमान प्रमाण ही लगाते रहे, सच्चाई में तो शब्द प्रमाण शास्त्र ने बोल दिया दिव्य चिंतामणि धाम। इस पूरे वृंदावन में 137 वन है, 137, और आगरा से लेकर के आपके होडल से भी आगे अगर हम चले जाएं हरियाणा के क्षेत्र भी ब्रज मंडल के अंदर आते हैं। 84 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, तो कितना हुआ 84 × 3। हाँ 252, 252, 252 किलोमीटर जो है ये ब्रज मंडल है। इस ब्रज के अंदर जो रज है ये कोई साधारण रज नहीं है। व्रज की जो रज है पता है कैसे बनती है, 84 कोस की व्रज की रज। इस रज को लोग उठा करके ले जाते हैं, डब्बा भर के घर में रखते हैं और रात को बोनविटा और कॉम्प्लान की जगह दूध में डाल के खाते हैं। एक कण भी अंदर चला जाए तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ खाद डालेंगे ना तो हमारी जो भौतिक बुद्धि वो बीच में आएगी, वो कहेगी अरे मिट्टी खाएगा, इतना पागलपन किस बात का, इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है भक्ति करनी है, माला करनी है, इतना भी क्या पागलपन है कि नहीं, हमारी भौतिक बुद्धि बीच में आती। लेकिन जिस दिन ये आ जाएगी कि ये जो है मिट्टी ये तो भगवत धाम पहुंचा देगी, तो बहुत सारे हैं ऐसे भक्त जो कि अपने घर में रखते हैं और थोड़ा थोड़ा उसका जैसे चीनी का थोड़ा सा स्पर्श करते हैं डालते हैं, तो ये बहुत ही दिव्य है यहाँ की व्रज। कैसे बनी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान ने उनको ऑर्डर दिया कि कृष्ण पक्ष के अंदर में जो अभी आने वाला जन्माष्टमी उत्सव, भगवान ने कहा कि मैं उस समय बारिश के महीने में जब बारिश बहुत होती है उस आषाढ़ के महीने में उस कृष्ण पक्ष में अंधेरी रात में अष्टमी के दिन है ना मैं वहां अवतरित होऊंगा पृथ्वी पर। तो ब्रह्मा जी काम करो मेरे लिए सारा व्यवस्था करो। तो भगवान ने उनके सारे लोगों में भाई एडवर्टाइजमेंट हो गया कृष्ण आ रहे हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया कि कथा होने वाली है इस्कॉन द्वारका की तरफ से, तो आप लोग आ गए कि नहीं, तेरे एडवर्टाइजमेंट हो गया कृष्ण आने वाले हैं द्वापर युग में, तो सारे के सारे देवी देवताओं ने कहा हमें सेवा चाहिए, हमें सेवा चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत तुरंत वैकेंसी में सेवा लगा दी, सबकी सेवा लग गई, सब सेवाओं मिल गई, तो कुछ देवता ऋषि रह गए। वो बोले, ऋषि मुनि बोले और स्वर्ग के देवता आदि बोले, बहुत तपस्वी जो तप लोक में है, हमारे पृथ्वी से ऊपर 6 लोक हैं, पृथ्वी लोक उसके ऊपर है, पितृलोक उसके ऊपर, स्वर्ग लोक, जन लोक, महर लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक। ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में रहते हैं, उसके ऊपर विष्णु लोक, विष्णु लोक के ऊपर द्वारका, द्वारका के ऊपर मथुरा, मथुरा के ऊपर गोलोक धाम, गोलोक धाम सर्वश्रेष्ठ ऊपर भगवान का धाम, अप्रकट जगत और ये है प्रकट जगत। तो उस गोलोक धाम से भगवान आने वाले सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी सेवा ले ली, कोई सहचरी बन गया, कोई गोपी, कोई सखी, कोई ग्वाला, पेड़, वृक्ष। तो है ना, उन्होंने ब्रह्मा जी बोले सॉरी नो वैकेंसी, अभी तो जगह भर चुकी है। तो देवता ऋषि मुनि बोले अरे जगह भर के कृष्ण का दर्शन नहीं होगा, भगवान का ये तो गड़बड़ है। तो बोले भाई आप देख लो, अगर कोई जगह हो आप मुझे बता दो, मैं दे दूं, हमें कोई मनाही थोड़ी, हमें तो बोला बनाने के लिए। अभी देवता ऋषि मुनि की मीटिंग हुई, मीटिंग करके बैठ गए, बोले कि कौन सा स्थान ऐसा चुना जाए जहां जाने पर कृष्ण बलराम और राधा रानी की कृपा मिलेगी। तो उन्होंने जब चिंतन किया तो पता चला 84 कोस व्रज मंडल भगवान ने अपनी एम्बेसी के लिए मार्किंग किया। मार्किंग होता है ना, प्लॉट की मार्किंग होती है, वीरेंद्रपुर जानते हैं, मार्किंग होती है प्लॉट की, डीमार्केशन आप भी जानते हो, आप भी प्रॉपर्टीज में मार्किंग कर दी, डीमार्केशन, ए 84 कोस ये मेरा एरिया, इसमें घुसने वाला पवित्र हो जाएगा, इसमें घुसने वाला भक्त हो जाएगा, इसमें अगर कोई लेट जाएगा दंडवत प्रणाम माना जाएगा, इसमें कोई अगर हाथ ऊंचे करके उबासी लेगा तो भगवान कहेंगे ये कह रहा है भगवान मैं आपके शरणागत हूं, दोनों हाथ ऊपर करके बोल रहा है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 इस धाम। तो ऋषि मुनि बोले कि यार जगह तो ढूंढनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा ऐसे स्थान दे दीजिए हमको, अपना भगवान की जो 84 कोस की जमीन है, इस जमीन के ऊपर, इस धरती, इस पृथ्वी स्थान के ऊपर जो मिट्टी है वो हमको बना दीजिए। तो हजारों लाखों ऋषि मुनि जो थे, भगवान ब्रह्मा ने कहा तैयार हो, गर्मी में तपना पड़ेगा, बारिश में भीगना पड़ेगा, कीचड़ होगी, लोग जूते पहन के चलेंगे, और जब धीरे धीरे कलयुग बढ़ेगा तो मोटर गाड़ी लेकर के लोग आएंगे, बसों में भर के द्वारका से तुम्हें रोनते हुए चलेंगे, तैयार हो। कहा सब कुछ तैयार है झेलने के लिए, बस कृष्ण का दर्शन हो जाए। तुमने कहा ठीक है, एवं अस्तु, एवं अस्तु, एवं अस्तु, क्या बन जाओ, मिट्टी के कण बन जाओ। तो इस रज जो है ये और कोई नहीं है, तपस्वी ऋषि मुनि ने जिन्होंने हजारों लाखों साल तपस्या करी, कृष्ण भजन किया, तप लोक में पहुंच गए, ब्रह्म लोक पहुंच गए, कृष्ण का पुनः स्पर्श पाने के लिए रज बन करके प्राप्त। सोचिए आप, ऐसी रज जो है, इसीलिए वृंदावन में भगवान कृष्ण कभी जूते नहीं पहनते। वो कहते हैं ऋषि मुनि मेरा स्पर्श करने आए और मैं पाद रक्षिका से, चप्पल को क्या बोलते हैं, पाद रक्षिका से मैं उनको स्पर्श ना दूं तो ये तो गलत हो जाएगा ना, बेचारे इतनी मेहनत करके यहाँ आए, कण बन गए और मैं चप्पलें पहन के चलूं। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने जब तक यहाँ पर अपनी लीलाएं, प्रकट लीलाएं करी हैं, तब तक भगवान ने कभी शूज नहीं, जूते नहीं पहने। भगवान कहते हैं जब गाय जूते नहीं पहनती तो मैं क्यों जूते पहनूं, गाय पहनती है क्या, और गाय कौन है, हाँ भक्त गो माता है, गाय भगवान की भी भगवान है। भगवान किसकी पूजा करते हैं, जब भगवान को गोचारण मिला 5 साल की उम्र के बाद, भगवान से कहा गया, भगवान ने कहा मैं गाय चराऊंगा, आप कल हम जाएंगे टेर कदम स्थान जहां पर कदम के वृक्ष पर बैठकर के कृष्ण ने गायों को चराया है, वो स्थान आज भी विराजमान है। टेर मतलब वो आवाज लगाते थे, है ना, गोरी काली, ऐसे उनके ग्रुप्स थे, 108 108 के वो आती थी गैया दौड़ दौड़ के कृष्ण के कहने पर। तो ऐसे स्थान है, आपको भी दर्शन हो सकता है अगर प्रेम का अंजन हो, भक्ति का अंजन, आपको दिखेगी गोधूली लीला है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा जब मेरी गाय मेरा भगवान है, मैं उनकी पूजा करता हूँ, रोज उनकी आरती उतारता हूँ, भगवान है उनकी आरती दुनिया उतारती है, वो किसकी उतारते हैं, वो गाय की उतारते हैं। भगवान कहते हैं ये मेरी भगवान है, इसीलिए मेरा नाम गोपाल, मैं गायों का पालन करता हूँ, इसलिए मेरा नाम गोलोक, जिस लोक में गाय रहती हैं। भगवान को गाय बड़ी प्रिय है और दूसरे भक्त बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीन हो, मैं भक्त के पराधीन हूं, इसीलिए यशोदा मैया मुझे बांध देती हैं भगवान को, इसीलिए नंद बाबा कहते हैं लाला मेरे जूते उठा लाना, तो दोनों जूतियां सिर पे लग के भगवान चले आते हैं। अर्जुन कहता है मेरे सारथी बन जाओ, तो भगवान ड्राइवर बन जाते हैं, हम में से कोई बनेगा ड्राइवर, बोले प्रभु जी आप कहो तो कभी कभी ट्राई भी कर सकते हैं और किसी के लिए तो नहीं बनेंगे, लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए, ब्रह्मांड के नायक जिनकी एक इशारे पर पूरा भूमंडल, पूरा पृथ्वी, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड सहस्त्र जिसमें ब्रह्मांड है वो हिल जाए, ऐसे भगवान एक छोटी सी लीला करने के लिए अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, ड्राइवर। ऐसे भगवान का दर्शन इस वृंदावन धाम में अनुभव किया जा सकता है भक्तों के संग में। तो अनुभव करने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा चाहे आपको अपनी कुछ भी करना पड़े लेकिन एक बार जरूर याद रखना पुरुषोत्तम मास में और कार्तिक मास में वृंदावन आना, और जो होता है गौर पूर्णिमा उसमें मायापुर जरूर जाना, गौर पूर्णिमा मतलब फरवरी मार्च के महीने में, उस समय मायापुर और कार्तिक और पुरुषोत्तम मास में वृंदावन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वृंदावन धाम में आना, भक्तों के संग में अनुभव करना, चर्चा करना कृष्ण के बारे में। तो यहां पर 137 वन है, 137 वन तो हम नहीं जा सकते हैं, हर कदम कदम पर वन है, है ना, 55 इसमें से ऐसे वन है जो कि भगवान के स्वरूप का दर्शन प्रदान करते हैं। जैसे मथुरा भगवान का हृदय है, क्या है, चलो सब लोग साथ में बोलिए, नींद आ रही होगी आपको, मैं तो बोरिंग आदमी हूं तो नींद, भगवान तो मथुरा भगवान का हृदय है, बोलिए। कुमोद वन और ताल वन भगवान का वक्ष स्थल है, वृंदावन भगवान का मस्तक है, बिल्लवन और भद्रावन ये भगवान के कान है, बिल्लवन और भद्रावन, काम्यावन भगवान का थोड़ी है, गीतावन जहां पर अर्जुन पांडव रहे वनवास जब हुआ उनका तो गीतावन में रहते थे, वो गीतावन भगवान की नासिका है, नाक है, भांडेर वन और कोकिला वन भगवान के हाथ है, खदीरा वन और भद्रा वन भगवान के कंधे हैं, और सुरभि वन जहां गाय रहती हैं वो भगवान की जिह्वा है, और भगवान प्रेम से इसीलिए जिह्वा के ऊपर किसको रखते हैं, और वो गाय सुरभि गाय जब खड़ी होती है भगवान के जिह्वा पे तो अपना दूध टपकाती है और भगवान क्या पीते हैं, दूध मक्खन छाछ ये पसंद है। कुछ लोग आजकल भौतिक संसार में चाय का भोग लगाते हैं, गोपाल जी कहते हैं हम हर चीज भोग लगा के पीते हैं, चाय भी भोग लगा के पीते हैं, जबकि भगवान ने कभी चाय पी क्या? भगवान कहते हैं चाय नहीं, चाय नहीं पीते हैं। लेकिन हम लोग चाय के ऐसे दीवाने हैं कि हम लोग वृंदावन में अगर बोला जाए एक दिन चाय मत पियो, ट्राई करो, तो छुप के पीते हैं, है कि नहीं? चाय से हमारा बहुत संबंध बन गया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा नो इंटॉक्सिकेशन, चाय छोड़ दो, एक नशा है। प्रभुपाद जी की पत्नी जो थी, राधा रानी नाम था उनका, प्रभुपाद जी की पत्नी उनसे तर्क करती थी, आप कहते हैं चाय छोड़ दो, चाय कैसा नशा है, शराब नशा होती है, तंबाकू नशा होता है, ये चाय कैसा नशा है? प्रभुपाद जी ने कहा ये ऐसा नशा है जिसको छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं हो। भाई नशा क्या है? जिस चीज को छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं हो, यही तो हैबिट है, वही नशा है। छोड़ने के लिए तैयार हो नहीं, छूट बोले छूटता नहीं है प्रभु जी, मन तो बहुत करता है छूटता नहीं, जो छूटता नहीं है वही नशा है। अहंकार भी नशा है, पैसा भी नशा है, ये सब नशा है जो छूटता नहीं है। कहते हैं प्रभु जी बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन छूट नहीं रहा। तो इस प्रकार से 55 वन भगवान के स्वरूप के रूप में यहाँ पर विराजमान है। यहाँ जो जो छोड़ना चाहते हैं एक बार क्या कर लीजिए, चिंता कर लीजिए उस चीज की, मैं प्रभु इस बार आया हूँ छोड़ कर जाऊंगा, तो क्या होगा, छूटेगा कि नहीं छूटेगा? अवश्य में वह छूटेगा, छूटता है, धीरे धीरे छूटता है, समय लगता है। तो इस प्रकार से उन 55 वनों में से भी 12 वन ऐसे हैं, द्वादश वन जिनको कहते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने अभी 500 साल पहले 1515 में आकर के उन दिव्य स्थानों को ढूंढा और वहां पर यात्रा करी, जिसमें बरसाना नंदगांव वन से अलग है। तो हम इन वनों में भी जाएंगे और इस बार हम कुछ विशेष स्थानों में जा रहे हैं। वृंदावन के अंदर कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इस वृंदावन में आ जाता है, ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु और ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, तो उसको तीन लोक हैं, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और नीचे वाले पाताल, नरक नहीं, नरक तो अलग है, पाताल के जो लोक हैं, इन सभी लोकों के अंदर जैसे अपनी पृथ्वी पर तीर्थ है, ऐसे स्वर्ग में भी तीर्थ है, सभी प्लैनेट्स में तप लोक में भी तीर्थ है। तो तीनों भुवन के अंदर जितने तीर्थ हैं, खाली इस इंडिया के नहीं, पृथ्वी के भी नहीं, तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, वृंदावन में आने मात्र से आपको सभी तीनों लोकों के तीर्थों में भ्रमण करने का फल प्राप्त होता है। और यहां पर वायु के प्रभाव से भी हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। वायु चलती है ना, जब अगर आपको स्पर्श कर जाए, आपको बड़ी ठंडी ठंडी, कितनी शीतल वायु है, वो शीतल वायु क्या कर रही होती है आपके ऊपर, जैसे होता है ना ऐसे पॉलिश कर रही होती है, आपने देखा होगा आजकल स्प्रे पॉलिश होती है, उसके बाद में स्प्रे ड्रायर होता है, कार की पॉलिश होती है, वैसे यहाँ पर पॉलिश कर देते हैं आपको भक्त। आप घर जाएंगे ना, लोग बोलेंगे आप में बड़ी चमक आ गई, कैसे आ गई, खा वृंदावन से है ना पॉलिश करवा के आए हम। तो ऐसा स्थान है यहाँ पर। जब आप यमुना में जाएंगे तो यमुना यहाँ की बहुत ही विलक्षण, यमुना देवी के अंदर भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया, वो स्थान आज भी है जिस स्थान पर चढ़कर के भगवान ने कालिया का दमन किया, कालिया के नाग के फन के ऊपर कूटा, उसको मारा पूरा अच्छे से और भगा दिया उसके विषैले नाग को यहां से। जिस पेड़ के ऊपर चढ़कर के भगवान कूदे, वो पेड़ आज तक जीवित है, 5000 साल पुराना, उसकी जड़ें समाप्त हो गई हैं लेकिन पेड़ में पत्तियां निकलती हैं। जिन पेड़ पर राधा रानी बैठ जाती हैं, वो पेड़ आज भी इमली के वृक्ष विराजमान है, जड़ें समाप्त हो गई हैं लेकिन फिर भी उसमें पत्तियां निकलती हैं। ऐसी लीला और किसी ब्रह्मांड में कहीं सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी? ये तो अभी आप सुन रहे हैं, अभी साक्षात हम आपको ले जाकर के दिखाएंगे। एक बार एक व्यक्ति था, उसको यहाँ का डेवलपमेंटल ऑफिसर बना दिया गया मथुरा प्रदेश का। उसने कहा सारे पेड़ तोड़ दो, रास्ते यहां पर ऐसे हैं टेढ़े मेढ़े, कह रहे कृष्ण भी टेढ़े मेढ़े, इनके रास्ते भी टेढ़े मेढ़े है ना। तो यहां पे जो है ना, कहते हैं बांसुरी बजाए चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, बोलो
बांसुरी बजाए चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है,
बांसुरी बजाए चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है,
बांसुरी बजाए चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है।
नंद के ये पुत्र मदन गोपाल हैं। मदन गोपाल मतलब, मदन मतलब है काम। अभी इंसान बहुत सफर करता है लस्ट डिजायर से। कामदेव को भी यहाँ पर भगवान ने समाप्त कर दिया। ऐसे ये स्थान मदन मोहन स्थान, वो भी हम जाएंगे, वहां भी हम देखेंगे, कथा सुनेंगे मदन मोहन की। तो डेवलपमेंटल ऑफिसर के अंदर भी कोई डिजायर आया, उसने कहा तोड़ दो यहाँ के पेड़, रोड कर दो सीधी। अपने कारीगर लगा दिए, हेक्सा ब्लेड लेकर के आए और पेड़ को काटने का प्रयास किया। जैसे ही पेड़ को काटा ही था, बस हेक्सा ब्लेड लगाया, जैसे ही लगाया आधा भी अंदर गया, अंदर से खून की धारा निकलने लग गई। अभी ये बिलीव करने वाली बात नहीं होगी, ऐसा लेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मन में तुरंत आएगा पर ये अपराध है। धाम के अंदर आपको पहले ही धाम अपराध के बारे में बस में बताया गया, धाम में कुछ भी अनुमान मत लगाना, अपराध बन जाएगा। इस पे सिर्फ विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये शब्द प्रमाण है, लिखा है, ऐसा बताया आचार्यों ने। खून निकलने लगा, वो बेचारा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, ये कैसे हो गया। उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हो आचार्यों ने कि स्थान दिव्य धाम है, यहाँ के वृक्ष गोपी हैं, ग्वाल बाल सखा हैं, कृष्ण के इंतजार में खड़े रहते हैं, कब कृष्ण आएंगे हमारी छाव में आकर के बैठेंगे। रात्रि में ग्वाल बाल बन जाते हैं, सखी बन जाते हैं, नृत्य करते हैं, रास नृत्य करते हैं। आपने इन्हें काट दिया, ये दिव्य है। फिर अब आप जाएंगे देखेंगे पेड़ है रस्ते के बीच में खड़ा होकर, बीच में खड़ा पेड़ बताओ, वो पेड़ नहीं है वो गोपी है। लेकिन इन पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता है कैसे, क्योंकि हमारी सांसारिक जो एजुकेशन है ना, भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे जड़े रविद्या माया रवैभव, जड़ जो विद्या है ये माया का वैभव है, हमें बिलीव ही नहीं करने देती है भगवान की ऐसी ऐतिहासिक पौराणिक और साक्षात कथाओं के ऊपर। तो यहाँ पर भगवान की बहुत लीलाएं चलती हैं, तो हम इन दो दिनों में पांच चीजों पर मुख्यतः ध्यान देंगे। पांच चीजें चैतन्य चरितामृत में बताई हैं। भक्ति के 64 अंगों में से पांच अंग बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं? कहते हैं, बोलिए मेरे साथ, साधु संग।
साधु संग
सब नहीं बोल रहे हैं, साधु संग,
साधु संग
नाम कीर्तन,
नाम कीर्तन
भागवत श्रवण,
भागवत श्रवण
मथुरा वास,
मथुरा वास
श्री मूर्ति र
श्रद्धाय सेवन,
श्रद्धाय सेवन साधु संग नाम कीर्तन,
साधु संग नाम
भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाया सेवन। तो साधु संग पहली चीज, भक्तों को छोड़ करके मत जाना। कई लोगों की आदत होती है, पॉकेट में पैसा है, सामने कुछ दिखाई दिया, चलो चलो अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ा, चल भाई कुछ खरीद लेते हैं। खरीदने आए हैं यहाँ, बिकने आए हैं, हमें खरीद ले कृष्ण, यहाँ बिकने आए हैं, खरीदने आए, ठीक है। वैष्णव परिधान की आवश्यकता है, उसके लिए समय दिया जाएगा, पर कथा के दौरान अपना दिमाग मत घुमाइए, घुमा घुमा के पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम में चक्र में फंस चुके। अब मौका मिला है, इस बार दिमाग मत घुमाओ, एक बार तो विनम्रता से भगवान से प्रार्थना कर लो, हे प्रभु अब इन चक्रों को समाप्त करो, अब की बार आए हैं, अब दोबारा आना बस आपकी सेवा में रह जाए। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम करेंगे साधु संग, नाम कीर्तन, जितना बन सके उतना नाम जप करो, श्रवण भागवत कथा का श्रवण करो, मथुरा वास, मथुरा वास आपको मिल ही रहा है वृंदावन में वास, श्री मूर्ति और भगवान की जो मूर्ति है, भगवान की जो जितने भी आप दर्शनीय स्थल पर जाएंगे, श्रद्धा या सेवन, श्रद्धा सेवन उनको दंडवत प्रणाम करना। किसी की शारीरिक अवस्था नहीं है तो ठीक है चलेगा, परंतु श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए, उनकी कथाओं को ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, और हो सके तो पेन पेपर लेकर के लिखना भी चाहिए, जो कि कुछ बात लिखते नहीं है। कहते हैं चैतन्य चरितामृत के 22 चैप्टर मध्य लीला के 160 वर्ष में लिखा है, कृष्णम स्मरणम जनम चास्य प्रेष्ठम निज सामिहितम तत्तत् कथारतश्च आसो कुर्यात् वा संवृजे सदा। हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना, जब भी ब्रजमंडल में रहो भगवान की कथा का श्रवण करते रहना। फ्रॉम हिज लविंग डिवोटीज, कौन से? जो भक्त कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनकी कथा से प्रेम करते हैं, उनसे निरंतर कथा सुनते रहना। ऑलवेज फोकस ऑन द कथा टॉपिक्स, और सदा भगवान की कथाओं के जो टॉपिक्स हैं, वो जो उनके उद्देश्य हैं, उन चीजों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना। और भगवान के वृंदावन धाम में जब वास करो तो निद्रा आलस्य को भगा करके ज्यादा समय कथा श्रवण अध्ययन पे लगाना, नाम जप में लगाना। इस तरह से क्या होगा, कृष्णम स्मरणम जनम च अस्या, जन्म जन्म तो कृष्ण का स्मरण बना रहेगा। कई लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी हम जप तो करते लेकिन मन नहीं लगता है। वो मन लगने लग जाएगा जब आप इस प्रकार से वृंदावन में अपने दो दिन गुजारेंगे। यहाँ पर तीन चीजों से ये जो कथाएं कही जा रही हैं, एक है शास्त्र प्रमाण, एक है साधु प्रमाण, एक है लोक प्रमाण। तो कुछ कथाएं हैं जो कि शास्त्रों में हैं, कुछ कथाएं हैं जो कि भक्तों ने सुनाई हैं, जो उनके अनुभव हैं, और कुछ कथाएं हैं जो कि यहाँ के व्रजवासी सुनाते हैं, जिन्हें लोक कथाएं कहते हैं। तो हमें उन पर भी बिलीव करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो लिखा नहीं है, ये बेकार है, फॉल्स है, पर ये व्रजवासी के मुख से भगवान कहलवा रहे हैं, तो हमें उन पर भी भरोसा करना चाहिए, लेकिन सिर्फ वृंदावन में और कहीं नहीं। यहाँ पर दो प्रकार की लीलाएं चलती हैं, एक लीला होती है नित्य लीला, एक होती है नैमित्तिक लीला। नित्य लीला जो होती है वो भगवान का रास नृत्य है, जो कि हर रोज शाम को 8 बजे के बाद जब आप यहाँ के कुंजों में जाएंगे तो आपको रास नृत्य का दर्शन हो सकता है, अगर आपके पास भौतिक नेत्र ना होकर आध्यात्मिक नेत्र। नैमित्तिक लीला है जो कि भगवान के गोलोक धाम में हमेशा चलती रहती है। तो यहाँ पर 8 लीलाएं पूरे दिन के अंदर चलती हैं अलग अलग समय पर। पहली लीला होती है जिसको कहते हैं निशांत लीला, जो कि सुबह 3:36 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक चलती है। क्या बोलते हैं? इधर वाले बोल नहीं रहे, कौन सी लीला? निशांत। सब शांत हो गए हैं। निशांत, निशांत मतलब जब निशा का अंत होता है, निशा मतलब रात्रि। रात्रि का जब अंत होता है तो 3:36 से 6 बजे तक की जो लीला है इसको निशांत लीला कहते हैं। फिर होती है प्रातः लीला, 6 बजे के बाद भगवान की प्रातः लीलाएं प्रारंभ होती है। ये हमारे मंदिरों में भी होती है, 6 से 8 बजे तक की जो लीला है इसे प्रातः लीला कहते हैं। फिर आती है पूर्वाह लीला, कौन सी? ये 8:24 से 10:48 तक चलती है, इसे पूर्वाह लीला कहते हैं। उसके बाद आती है मध्यान्ह लीला, मध्यान्ह मतलब मिड डे मील होता है ना, जैसे मध्यान्ह भोजन मिड डे, तो होती है 10:48 से दोपहर के 3:36 तक। उसके बाद चलती है अपराहन लीला, जो कि 3:36 से 6 बजे तक। तो अभी कौन सी लीला चल रही है? अपराहन लीला। उसके बाद आती है शयन लीला, शाम को भगवान के शयन की लीला होती है, 6 बजे से 8:24 तक चलती है, और 8:24 पर भगवान को दूध का भोग लगाया जाता है सभी मंदिरों में। उसके बाद होती है प्रदोष लीला, जिसमें भगवान को सुलाया जाता है, 8:24 से लेकर के 10:48 तक कीर्तन किया जाता है, हल्के स्वर में भगवान सोते हैं, और 10:48 के बाद बिल्कुल उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। 10:48 से सुबह के 3:36 तक नक्त जो लीला होती है इसके अंदर भगवान को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाता, लॉक करके छोड़ दिया जाता। इसमें भगवान अपने बिल्कुल निजी सखी सहचरी पार्षदों के साथ वार्तालाप करते हैं। कल कौन सी लीला करेंगे, कल कहाँ जाएंगे, कल क्या क्या करेंगे, प्लानिंग होती है ना। तो हमारे एक भक्त थे इंद्रा प्रभु, बहुत सुंदर कीर्तनीय थे, आपने सबने उनका कीर्तन सुना होगा। वो भगवान की निशांत लीला तक जागा करते थे और ज्यादातर उनका प्रदोष लीला में सेवा होती थी, और उन्होंने इसी संसार में रहते रहते श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी को उन्होंने बोला था कि हम इंडिया जाकर सेवा करना चाहते हैं। 1972 में इंद्रा प्रभु इंडिया आते हैं और उनको श्रील प्रभुपाद कहते हैं 24 घंटे का कीर्तन करो, है ना, 24 घंटे कीर्तन करो। तो 24 घंटे कीर्तन के सम्राट बन जाते हैं, सेवा करते कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते रहते हैं 24 आवर्स कीर्तन, और कभी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं गए, लेक्चर देने, प्रचार करने, किसी को जोड़ने, लेकिन पूरे विश्व को वृंदावन से बैठ करके बदल दिया। एक स्थान पर बैठे बैठे इतना उन्होंने भजन किया, इतना भजन किया, उसकी ऐसी ब्रह्मांड में ध्वनि फैली कि पूरा विश्व परिवर्तित हुआ। तो भगवान के जो नाम जप है इसमें बहुत शक्ति है। एक स्थान पर बैठकर भी आप लोगों का जीवन बदल सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से वो लीला करते थे। तो जब उनका अंत समय आया तो उनका एक स्पेशल रूम है जो दोपहर में 3 बजे के बाद ही दर्शन होता है उसका। तो कुछ भक्तों को कभी कभी मौका मिला है, माताएं तो नहीं कर सकती क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर है क्योंकि वहीं रहते थे, लेकिन पुरुष भक्त जा सकते हैं। 3 से शाम को 6 बजे तक दर्शन होता है। वहां उनकी समाधि भी है और उनके पास 1000 से अधिक शालिग्राम शिला थे जिनकी वो रोज सेवा करते थे। गौड़ निताय उनके पर्सनल रूम में थे। पूरे रूम को उन्होंने एकदम स्पिरिचुअल रूम बनाया था, कैसे गाय के गोबर से लेपन करके। आज के युग में लाइट भी थी, लैपटॉप भी था, तार भी थे, लेकिन उसके अंदर पेंटिंग करी थी गाय के गोबर से। जहां चलते थे उधर जहां भी पेड़ की डंडियां गिरती थी, पेड़ की डंडी उठा करके रख लेते थे, बोलते दिस इज वन गोपी। और उनके कमरे के अंदर हजारों हजारों लकड़ियों का भंडार था, बांध बांध के रखते थे। लोग बोलते थे अगर आग लग गई ना आपके कमरे में, ऐसे जल जाएगा, गोबर है, लकड़ियां हैं, तुरंत जल जाएगा। कहते थे आग लगेगी तो भी किस में लगेगी, भौतिक जगत में लगेगी, आध्यात्मिक जगत तो शाश्वत है, कभी आग लग सकती है। यहां आग लगेगी तो वहां पर जल गिरेगा, सुख मिलेगा। पर ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक दिन एक भक्त को बोला मेरी जो प्रदोष लीला है, मैं जब दूध देता हूं भगवान को रात्रि में शयन लीला के समय, प्रदोष लीला के समय, तो कई बार मुझे ऐसा अनुभव होता है कि है ना राधा रानी की सखियां कहती हैं तुम्हारे द्वारा बनाया गया दूध जो है ना वो कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है, तो क्यों नहीं तुम गोलोक धाम में दूध की सेवा करते वापिस आके, के जो ही तुम्हारी सेवा थी तुम वापिस सेवा में आओ। तो दूध अपने रूम में स्पेशल बनाते थे भगवान के लिए, मंदिर के किचन में नहीं बनाते थे, अपने रूम में बनाते थे। वहां गैस स्टोव भी रखा था और उससे लाके फिर भगवान को भोग लगाते, फिर फैनिंग करते करते भगवान को शयन कराते थे और सुबह उठ करके श्रृंगार करते थे। निशांत लीला में मंगला आरती के बाद, दर्शन आरती के समय, प्रात लीला में तैयार करते थे भगवान को। उनका स्पेशल डेकोरेशन होता था विग्रह का, कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर को अधिक प्रेम करते थे। तो एक दिन जब सुबह उठे नहीं वो भक्त, ना उठे तो ये तो अचंभा हो जाता है, भक्त नहीं उठा। हम लोग तो आदत हो गई है नहीं उठने की, है ना, कभी कभी उठ जाए तो अचंभा होता, अरे आज आप उठ गए। क्योंकि कल जब हम 4:10 पे जाएंगे मंगला आरती तो गारंटी है इस ग्रुप में से कुछ लोग रह जाएंगे, बच्चे रह जाए चलता है, बच्चों के साथ वाली माता भी रह जाए चलेगा, लेकिन जो पुरुष अकेले हैं या जो माताएं पुरुष इस स्थिति में उनके साथ कोई बहुत छोटा बच्चा नहीं है तो प्रयास करना चाहिए मंगला आरती का दर्शन। तो अचंभा हुआ, उठे नहीं, तो रात्रि में गए रूम को, भक्तों ने खोलने की कोशिश की, तोड़ा तो देखा सच में रात्रि में आग लग गई थी रूम में। जब वो दूध गर्म कर रहे थे तो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और काउडंग ने आग पकड़ ली, लकड़ियों ने आग पकड़ ली और उनका पूरा शरीर बर्न हो गया। और उन्होंने बर्निंग अवस्था में शालिग्राम शिलाओं पर चढ़कर के दंडवत प्रणाम किया गौड़ निताई को और अपने प्राण उन्हीं 1000 शालिग्राम शिलाओं के ऊपर उन्होंने छोड़े। तो भक्तों ने सुबह देखा, बहुत ही विलाप किया, लेकिन भक्त बोलते थे कि उन हमें विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों विलाप हम इसलिए कर रहे हैं कि कितना बढ़िया साधु संघ चला गया, परंतु इस बात की खुशी है कि वो वापस अपनी सेवा में भगवत धाम चले, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे दूध की सेवा के लिए राधारण। ऐसा किसने बताया, होलीनेस महानिधि महाराज ने अपने प्रवचन में बताया, क्योंकि वो दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। 1972 में दोनों साथ में वृंदावन आए, तो ये मैंने उन्हीं के लेक्चर में बैठ के सुना था जिस दिन आइंद्रा प्रभु जी का देहांत हुआ था, उन्होंने अपनी लीलाओं में प्रवेश किया, उसी दिन मैं आया और मैंने कथा सुनी और ये सारा जो मैंने आपको सुनाया उसी दिन सुना था। मोस्टली लोगों को नहीं मालूम होगा क्योंकि वो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, वो लेक्चर सिर्फ जिन लोगों ने सुना था उस दिन मंदिर में उन्हीं लोग जानते हैं। आई वॉज देयर, फॉर्चुनेट, मैंने सुना था। तो इसलिए यहाँ पर आए हैं, जितना हम ले सकें वो लेने का प्रयास करें। तो अभी हम यमुना के घाट में जाएंगे और यमुना घाट में जाकर के यमुना में स्नान करेंगे। यमुना को यहाँ का गंदा पानी मत मानिएगा, अधिकतर लोग यहाँ पर सोचते हैं दिल्ली के गंदे गटर का पानी यहाँ आ रहा है, परंतु अभी पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर सफाई भी चल रही है, तो अभी आप जाएंगे आपको अच्छा पानी का दर्शन होगा। यमुनोत्री से यमुना मैया आ रही है यहाँ तक, बीच बीच में रोक दिया गया है उनको यमुना नगर के पास, परंतु फिर भी जो भी है जैसा भी अवस्था में है हमें उनको स्वीकार करना चाहिए, हमें अपराध नहीं करना है। तो एक लीला सुनाऊंगा आपको अंतिम यमुना मैया की, और फिर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, समय हो रहा है। कि यहाँ पर एक बार भगवान श्री कृष्ण जो थे उन्होंने राधा रानी को सदा मान, राधा रानी मान करके बैठ जाती, गुस्सा हो जाती है, तो कृष्ण उनको मनाते हैं, मान जाओ ना मेरी प्रिय, मान जाओ ना। तो राधा रानी ऐसी है, सॉफ्ट हार्ट है, मान भी जाती है। लेकिन राधा रानी के मन में एक दिन आया, कहा प्रभु आप हमेशा मुझको मनाते रहते हैं, है ना, ऐसा नहीं हो सकता किसी दिन आप रूठ जाओ और हम आपको मनाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो कृष्ण बोले देखो राधा ऐसा है कि मैं ब्रह्मांड नायक हूं, मैं अगर नाराज हो गया ना तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं ना बड़ा डिटरमाइंड हूं, मैं अपनी बात से टलमल नहीं होता, बोल दिया तो बोल दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन फिर भी हम देखना चाहते हैं आप कैसे लगेंगे ना, बिल्कुल एकदम कैसे लगेंगे जब आप रूठ जाएंगे, ऐसे मुंह करके बैठेंगे कितने, हम लोग तो रोज ही रूठते हैं, आप रोज ही हमें मना लेते हो कुछ ना कुछ कह के, पर हम देखना चाहते हैं आप कैसे रूठते हैं। तो जब इस प्रकार से कहा तो कृष्ण बोले कि चलो आपकी इच्छा है, राधा की इच्छा कृष्ण का क्रिया, राधा रिक्षा कृष्ण क्रिया, राधा की इच्छा कृष्ण की क्रिया। राधा ने कहा कृष्ण का ठीक है, कृष्ण भगवान वंशीवट के पास नाराज होकर के बैठ गए, जहां हम जाएंगे अभी यमुना स्नान के लिए, नाराज होकर के बैठ गए। अभी राधा रानी बोली मान जाओ ना, ओ कृष्णा मान जाओ ना, मान जाओ ना प्लीज मान जाओ। तो कृष्ण कहते मान जाओ ना, अच्छा अच्छा हम आपके लिए ना मक्खन देंगे मक्खन, अरे वृषभानु महाराज की हमारी जितना भी दूध आता है ना सारी गोपियां इकट्ठा होकर आपको देंगे, अच्छा मधुमंगल के लिए लड्डू लेके आएंगे आधे आपके आधे मधुमंगल के। ये तो राधा रानी बोली ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, सब कुछ करके देख लिया रात्रि होने वाली है ये तो मान ही नहीं रहे, भगवान आपने कहा तो था कि आप हो लेकिन इतने सख्त तो हमें नहीं मालूम था, इतने सख्त कुछ बोली नहीं, कहा क्या करें भाई ये तो बड़ी मुश्किल की बात पड़ गई। तो सबने यमुना माई की शरण ग्रहण की, यमुना माई के पास गए जो कि भगवान की अष्ट पटरानियों में से एक कालिंदी मैया, यमुना मैया के पास गए, यमुना मैया को जाकर के बोले हे यमुना मैया कुछ करो, आप तो सभी के दुख दर्द दूर करती हो, गर्म अवस्था में जब लू चल रही होती है तो यहाँ के ब्रजवासी आपकी यमुना में स्नान करके ठंडक का एहसास करते हैं, कालिया जैसे विषैले नाक को भी आपने शरण दे दी थी, हमारी तो मदद करो ना। यमुना मैया बोली मेरी मदद चाहिए, हो गया फिर जाओ फिनिश हो जाएगा, जाओ टेंशन मत लो, कृष्ण को मैं कर दूंगी सेट। अच्छा आप कृष्ण को कैसे करेंगे, बोले उससे आपको मतलब नहीं, आम खाओ गुठलियों के दाम मत मांगो, क्या है कहां से आया क्या है ये चप चप करने। ठीक तो यमुना मैया ने तुरंत ही भगवान के जैसे वस्त्रों को धारण किया, भगवान के जैसा मोर मुकुट लगाया, भगवान के जैसी बांसुरी ली, भगवान के जैसे ही गुलाब की मालाएं पहनी, और एक माला छोटी फिर एक उससे थोड़ी बड़ी फिर थोड़ी बड़ी फिर थोड़ी बड़ी फिर थोड़ी बड़ी फिर घुटने तक फिर नीचे पैरों तक, इतनी सारी मालाएं क्यों पहन ली, क्योंकि अगर वो स्त्री स्वरूपा रूप में जाती तो उनके वक्षस्थल को देखकर कृष्ण पहचान जाते, अरे ये तो यमुना है, तो हम नाराज ही बैठे रहते मानते नहीं। लेकिन उन्होंने अपने पूरा शरीर ढक लिया, देखने में जैसे पुरुष लगे, अच्छा चलने में चितवन तो कृष्ण की भी वैसी है और यमुना मैया भी, क्योंकि कृष्ण चलते हैं कैसे चलते हैं, बांसुरी बजाए चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, बांसुरी बजाए चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, नंद का ये लाला मदन गोपाल है, नंद का ये लाला मदन गोपाल है, नंद का ये लाला मदन गोपाल है। तो भगवान ने देखा जब उसी कुंज में भगवान रूठ करके बैठे थे, सभी राधा रानी गोपियां सब अपने अपने चले गए साइड में, कहा अभी मन तो लग नहीं रहा घर कैसे जाए, तो छुप करके देख रहे, होता है ना केस को हैंडल करने के लिए कोई आ जाए फिर भी हम छुप करके देखना चाहते, हुआ क्या, व्हाट इज द रिजल्ट, तो रिजल्ट देखना चाह रही थी सभी। तो भगवान के वहां पर यमुना मैया प्रवेश करती है, और यमुना मैया का कलर कैसा है, ब्लूइश, यस, श्याम सुंदर स्वरूपा है यमुना मैया, बिल्कुल उनके जैसा है। राधा रानी का रंग है तप्त कांचन गौरांगी, गोरा रंग है, सोने का, पिघला हुआ सोने के जैसा। परंतु यमुना मैया का रंग ब्लूश, ब्लूश कलर की सुंदर काजल लगा करके, सुंदर वैसे ही भगवान के जैसे मोर मुकुट लगा, बांसुरी ले, गुलाब की माला हाथ में, एक लोटस ले लिया और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए श्याम सुंदर के सामने। अभी भगवान देखते कहते हैं, एकदम से ना एकदम मूड ही चेंज हो गया, कह रहे एक और श्याम सुंदर वृंदावन में, एक और श्याम सुंदर, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो उनको डर लग गया, राधा रानी इससे आकृष्ट हो गई तो मेरा तो खराब हो जाएगा, मेरा तो पृथ्वी पे अवतार लेना ही खराब हो जाएगा। एक और श्याम सुंदर, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हे श्याम सुंदर इधर आओ। अब ये टेढ़ी टेढ़ी चले यमुना भैया, मेरी पत्नी आए तो वैसे ही पीछे पीछे घुमाती है पतियों को, है ना, हमने तो देखा, अनुभव है। सारे पति हंस रहे और नहीं हंस रहे है कि, तो इस तरह से कालिंदी पत्नी भी है उनकी, तो पीछे पीछे चला रही है, कृष्ण पीछे पीछे चल रहे, आवाज लगाते क्या जा रहे हैं, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, इतने सुंदर तुम कौन हो, हे श्याम सुंदर दूसरे कहां से आए, यशोदा मैया का तो एक ही पुत्र था, तुम कहां से आए, क्वेश्चन पूछते जा रहे और चलते जा रहे पीछे पीछे। भगवान ने कहा आपकी सुंदरता से मैं इतना ज्यादा मोहित हो गया हूं, चलो दोनों दोस्ती कर लेते हैं अभी ना, कई कई बार ना मुझे बहुत विस्तार करना पड़ता है अपना, यहाँ भी करो वहां भी करो, गोकुल जाओ बरसाना जाओ, राधा रानी को मनाओ। कभी कभी मेरा मन भी करता है मैं चंद्रावली के साथ घूमू, मगर लेकिन राधा रानी मुझे छोड़ती नहीं है, अगर छोड़ दूं तो नाराज हो जाती है। तो ऐसा करो तुम ना राधा के साथ चले जाना, मैं चंद्रावली के साथ। तो सेटिंग करने में लगे कृष्णा, कहते हैं अभी तो दोस्ती हो गई, तो यमुना मैया मुस्कुराती कहती है हो गई, हाँ ठीक, कह रहे हो गई तो फिर पाले झप्पी। कहा कि ना 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 ये नहीं, कहा नहीं नहीं ये तो करने, ये तो हमारा तो रूल ही है, मधुमंगल कभी लड्डू लेके आता है तो खाते बाद में पहले झप्पी पाते, ये तो करना पड़ेगा। अभी तो घबरा गई, बोले कि ऐसी टच करेंगे पता चल जाएगा। अब यमुना मैया पीछे पीछे और श्याम सुंदर उनके पीछे, तो अभी पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पीछे से उनको ऐसे करके, रुकते नहीं हूँ श्याम सुंदर, ऐसे करके पकड़ा तो देखा, अरे तो स्त्री स्वरूप आए। कहा कालिंदी तुम श्याम सुंदर का वेश धारण करके आई थी? तो कहा हाँ प्रभु आई तो थी, क्योंकि आप ऐसा रूट करके बैठ गए थे कि राधा रानी और सखियों ने खूब प्रयास किया लेकिन आप मुस्कुराए तक नहीं, लेकिन अभी देखो आप कितने आनंद में हैं। कहा हाँ ये तो है, मेरा मान क्या हो गया, नष्ट हो गया है, तुमने मेरा मान नष्ट कर दिया है, इसलिए हे यमुना अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ वरदान दूं, आपने मुझे इतना आनंद दिया है ना, इतना आनंद अपने अपने सौंदर्य से इतना आनंद दिया है, मैं चाहता हूं आई शुड ब्लेस यू, कुछ ब्लेसिंग दूं, कुछ वरदान दूं। कहा ठीक है आप ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग ये दो कि जब भी कोई व्यक्ति यमुना में अपना शरण लेना चाहे तो आप, मैं उसको कृष्ण प्रेम प्रदान करने की शक्ति पा सकूं। द्वारका से जब भक्त चढ़ करके दो बसों में आए वृंदावन में और यमुना की शरण ग्रहण करके स्नान करें, डुबकी मारें, जैसे ही अंदर जाएं और बाहर निकले तो क्या मिल जाए, कृष्ण प्रेम मिल जाए, ऐसी शक्ति प्रदान कर। तो ऐसी शक्ति यमुना मैया को प्रदान की गई है और उनके पास बहुत शक्ति है, तो उनसे कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। आज मौका है, हम जाएंगे। कहते हैं बोलिए, जाके जीवन यमुना,
जाके जीवन यमुना,
वाके जीवन यमुना,
वाके जीवन यमुना।
एक है यमुना, एक है यमुना, यमुना मतलब यमराज, यमराज जो है वो यमुना मैया के भाई हैं। तो बहन कह देती है इसकी तरफ देखना भी मत, तो फिर यमराज देख नहीं सकते हैं, दोनों सूर्य के पुत्र पुत्री हैं, है ना, और कृष्ण भगवान के साले साहब हैं, कौन, यमराज, और यमुना मैया उनकी कौन है, पटरानी है। तो पत्नी की चलती है, पत्नी ने कह दिया भाई नजर मत घुमाना, तो भाई नजर नहीं घुमाएगा, और कह दिया पति जी इनको कृष्ण प्रेम देना, तो प्रेम देंगे। इसलिए यमुना मैया का वृंदावन में बहुत महत्व है, खास करके दीपावली के दो दिन बाद यम द्वितीया नाम का एक फेस्टिवल आता है, उस दिन यमुना में स्नान करने से सबको बहुत ही ज्यादा विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे दिन जरूर आप कोशिश करें। हमारे गुरु महाराज हिजोलिनस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज हमेशा वृंदावन आते हैं और यमुना में स्नान करते हैं उन्हीं दिनों में जिस दिन ये लीलाएं हुई हैं, तो आते हैं हमें दीपावली के दूसरे या नेक्स्ट डे गोवर्धन वाले दिन या फिर भाई द्वितीया वाले दिन। तो हम भी ऐसे आज यमुना में स्नान करेंगे, जाएंगे और कृष्ण प्रेम की इच्छा करेंगे। और यहाँ तक कि क्या बताएं कि जो लोग अपना शरीर त्यागते हैं व्रजवासी, उनके मन में एक ही इच्छा होती है, क्या? हमारे अंतिम शरीर को, जो लोग, कई लोग कहते हैं ना गंगा में हमारी अस्थियां विसर्जन करना, यमुना के कृष्ण प्रेम में रहने वाले भक्त चाहते हैं हमारी अस्थियों को यमुना में विसर्जन करना, क्योंकि यमुना के अंदर गया जाके जीवन यमुना, वाके जीवन यमुना, यमराज नहीं आते। ठीक है, तो हम चलेंगे यमुना की तरफ। यमुना में स्नान जो करना चाहते हैं वो स्नान करें, जो स्नान नहीं करना चाहते हैं वो बोटिंग का आनंद लें, और नहीं कम से कम इतना जरूर करें अपनी जप माला को और थोड़ा सा आचमन, सीधे हाथ से पहले जाके प्रणाम करें यमुना को और यमुना मैया को प्रणाम करके उनका थोड़ा जल लेके थोड़ा मुंह में डालें, थोड़ा सिर पे डालें, इसको कहते हैं आचमन करना। आचमन करके भी वही कृपा मिलेगी जो डुबकी मार के मिलेगी, तो इसलिए डुबकी मारना चाहो तो डुबकी मारो, नहीं मारना चाहो मैं तो मारने वाला हूं, बाकी आप लोगों का।